डायरेक्टर भी है उसमें, सेट डिजाइनर भी है, चाय पी रहे हैं सब लोग।
आई डोंट थिंक
इतनी
so.
प्यारी कंपनी exactly. थी, कुछ नहीं, किसी को किसी लड़की को नहीं देखते थे बुरी,
कभी ऐसी बुरी नजर से मैं टू बी ऑनेस्ट आई डोंट, मुझे
वरना तो कोई अच्छे फैमिली के आने नहीं देते
जी हमारे पहले। मुझे याद है शहनाज शेख ने यही कहा था कि मैं जब ड्रामा में आई तो मुझे डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, मगर जब मैं आई तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था जी।
हाय हाय जानू चीज है मेरी जानू।
हमारे साथ पहले कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका कि इतना बड़ा पाकिस्तान का नाम, इतना कीमती फनकार, और हमारी खुशकिस्मती है कि हम 770 पे इनको सुन सकते हैं। हम सब की तरफ से जो सुन रहे हैं बदर सलीम को, बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं यहाँ। और मतलब इतने बड़े फनकार को सुनते हुए उसी दौर में चला जाता है इंसान, इनकी आवाज़ और इस वक्त वाकई जो फीलिंग है वो बयान नहीं कर सकते हम लोग।
आपके कॉल करने का बहुत 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 शुक्रिया, और मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि दिल बड़ा, हमारे फनकार बेहतरीन फनकार हैं, एवरीबडी इज वेलकम। आप आइस ब्रेकर हो और फर्स्ट कॉल, हालांकि हमारी कॉल्स आती चलती चली जाती होती हैं, तो थैंक यू वेरी मच पुत्री, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल,
थैंक यू, आई लव यू,
थैंक यू फॉर योर कॉल। बदर आप यकीनन पाकिस्तान का इस हवाले से भी बात हो गई कि कौन भला कॉस्बी, बिल कॉस्बी आप देखिएगा कितने खूबसूरत प्रोग्राम करते थे, यानी उस आदमी को नजर आना बंद हो गया, आज वो यंग बच्चियों ने, और ये पैसा इतनी बुरी चीज है जो किसी को भी मिलिया मेट कर देता है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि हमारा पाकिस्तान का टेलीविजन और फिल्म स्टूडियोज जो थे वहाँ कोई इस तरह के मसाइल थे।
आई डोंट नो अबाउट फिल्म बिकॉज मैंने वहाँ तो फिल्म की नहीं, जब फिल्म था मैंने तो एक प्राइवेट फिल्म की जो यहाँ पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान में हुई थी, नहीं नहीं एक स्पेन में की, एक स्पेन में की और एक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में की, इन्हीं की जावेद शेख की, तो वहाँ भी मैंने कोई ऐसी चीज नहीं देखी,
कोई
बेहूदगी नहीं थी, कुछ नहीं थी, हालांकि सनात थी, फिल्म इंडस्ट्री की लोग थे इसमें, लेकिन कोई नहीं, मतलब हुमायूं सईद था, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, सलीम शेख था, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, और लड़कियां भी थी, सना बहुत अच्छी लड़की है, इवन मीरा।
आज अगर आपको ऑप्शन मिले या अगर आज आपको कोई ऑफर करे, और क्यों नहीं आप एडवर्टाइजमेंट साइट पे आती, यू आर अ नोन नेम, और
क्या करोगे
एड की जरूरत, एड एडवर्टाइजमेंट
जवानों को देते हैं, बूढ़ों को कहां देते हैं।
आपको एक बात मैं बताऊं, ये हमारा अलमिया है जहां मैंने एक तरफ पाकिस्तान की बहुत पॉजिटिव बात आपके साथ शेयर की है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में या हमारे टेलीविजन में कोई इस तरह की फाशी नहीं थी, मगर ये एक पाकिस्तान का, शायद आजकल के पाकिस्तान का अलमिया है। हालांकि वो कौन किंग था, जो लैरी किंग, आप देखिएगा कितनी उनकी एज थी और आखिर दम तक ही वॉज रिस्पेक्टेड टेलीविजन के प्रोग्राम्स में, इवन उनकी एक एक्सटेंट की और एक लॉ फर्म की एड तक के बीच में वो थे।
मैं अभी आपने कहा ना कि वो
अगर इनको मौका मिले,
इन्होंने कहा कि एड के लिए तो कौन बूढ़ों को कौन लेता है, मगर मैं सोचता हूं कि मुझे अगर कोई कहे कि भाई आप आर्टिफिशियल दांतों का या बैक पेन का या कायरोप्रैक्टर का उसकी एड्स में आ जाए तो मैं तो आ जाऊंगा, तो हमारी उम्र तो ऐसी
मैं
है।
खुद आ जाऊंगी अगर दें तो।
अच्छा
किसको पैसे नहीं अच्छे लगते,
हाँ
पैसे दें साथ यंग लड़कियों को,
ऑफ कोर्स
तो दें, किसी को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन नहीं
अगर आपको मौका
मैं मिले तो। करती थी, मैंने बहुत से ऐड किए हैं, शान के साथ भी किया है, और शुरू में जो जो थे डायरेक्टर ऑफ एड्स के जो थे यंग बच्चे जो पहचानते थे मुझे, उन्होंने मुझे लिया, रिस्पेक्ट भी, पैसे भी दिए, सब दी, लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो नहीं, वो यंग लड़कियों को अपनी पसंद के लोगों को लेते हैं, चाहे बूढ़े भी हों, समीना अहमद है और सब उनको लेते हैं, मुझे नहीं लगता कोई
प्यारी है,
आपसे डरते होंगे ना लोग, आपसे डरते हो
और क्या।
आई लव यू बदर खलील, आई लव यू, यू आर सो काइंड एंड अ वंडरफुल पर्सन। कोई पैगाम दीजिए टोरंटो वालों को,
खुश रहिए, मास्क पहनिए, एक दूसरे के करीब ना जाइए, खुदा के वास्ते मास्क पहनिए, ये ना फैलाइए, हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, अल्लाह करे सब जगह से खत्म हो जाए कोविड जो है ये, तो मैं बस यही पैगाम दूंगी कि बस लॉ को जो चीज़ें कही जा रही हैं कि इंजेक्शन लगवाएं, वो कुछ लोग नहीं यकीन करते इस पे इंजेक्शन लगाने पे, کچھ نہیں ہوتا لگا لیں, آپ ویسے بھی لگاتے نہیں ہیں انجیکشن, کسی چیز کا پیٹ خراب ہو یا بخار چڑھے تو انجیکشن لگ جاتا ہے, تو اس کا بھی انجیکشن لگا لیں, کیا فرق پڑتا ہے. دوسروں کو تو نہیں لگے گا نا, اگر آپ کو اپنی پرواہ نہیں ہے تو کم سے دوسروں کی پرواہ کر لیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز انجیکشن لگوائیں, ماسک پہنیں اور دور رہیں.
میری جیسی مائیں کیا کریں کہ ان کی بہویں اتنا پیار کریں جتنا آپ کو آپ کی بہویں پیار کرتی ہیں؟
کیا کریں,
کیا کریں کہ ہم بھی بہوؤں سے اتنا پیار حاصل کر سکیں جو آپ کو ملتا ہے؟
بس ساس نہ بنے, دوست بن جائیں آپس میں, مطلب وہ ان کو کرنے دیں جو وہ کر رہے ہیں, ان کے کام میں دخل نہ دیں تو دے آر ہیپی. چاہے وہ بچے ہوں, اپنے بچے ہوں یا بہوئیں, دونوں. میں نے تو اپنے یہ دیکھا ہے کہ جب میں ان کے کاموں میں دخل دوں کہ ارے یہ کیوں کر رہے ہو, یہاں کیوں جا رہے, تو پھر وہ سناتے ہیں اتنا.
ہاں
آپ کو کیا پتا, آپ تو مطلب جاہل ہو.
صحیح,
لیکن
مگر آپ نے اپنے آپ کو پڑھنے میں بھی مشغول رکھا ہے. یور مائنڈ از ناٹ ایمٹی مائنڈ, دس از ناٹ ورک شاپ آف ڈیول.
اس چیز سے ڈرتی ہوں کہ ہماری فیملی میں بھی ہے کہ وہ جو بھول جاتا ہے نا انسان, تو وہ اس سے بہت ڈرتی ہوں میں کہ میں بھولوں نہ کچھ چیز بھولوں نہ, سب مجھے پتہ چلے کیا ہو رہا ہے کیا دنیا میں.
بادام کھایا کریں,
بادام بھی کھاتی ہوں, کتابیں پڑھتی ہوں, اتنی کتابیں پڑھتی ہوں, کتابیں اس طرح سے پڑھتی ہوں کہ کتابوں سے آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ پیچھے کیا پڑھا ہے آپ نے. ساری موٹی موٹی کتابیں پڑھتی ہوں, ابھی میں نے ایک کتاب پڑھی آقا, اٹس اے بیوٹیفل بک اباؤٹ حضور کی ہے, لیکن اٹس اباؤٹ مکہ کا قصہ ڈیولپ ہوا اور کیا, بہت اچھی کتاب ہے. تو پھر ان کا قصہ ظہور ہوا, یہ ہوا آقا ہے ان کا, عبدالی کچھ سم تھنگ عبدالی ان کا رائٹر. اس کے علاوہ میں انگلش بکس بھی پڑھتی ہوں, فکشن بھی پڑھتی ہوں, سب چیزیں پڑھتی ہوں.
بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا.
تھینک یو,
بہت زندہ دل ہیں. آپ کی مہندی بہت خوبصورت ہے, کس نے لگائی ہے؟
میری بہو. یہ تو بہت میں نے کہا تھا خدا کی وجہ سے مجھے سمپل سی لگا دی, ورنہ وہ تو بیوٹیفل مہندی لگاتی ہے, بہت خوبصورت.
ماشاء اللہ آپ بہت لکی ہیں, اور اللہ کرے کہ آئی کین بی ایز ہیپی پرسن ایز یو. آئی لو یو. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے ڈرامے, پاکستان کے آرٹسٹ, وی ہیو ون آف دا فائنسٹ آرٹسٹ, اور اس محبت کو اپنے دل سے کبھی مت جانے دیجیے گا, چاہے وہ ہمارے آرٹسٹ سے ہو, چاہے وطن سے ہو, چاہے وطن کی مٹی سے ہو. آئی لو یو آل. Top of the hour and we'll come back with the news. آپ کا بہت شکریہ بدر آپا.
آپ کا شکریہ مجھے بلانے کا, اور lots of love to you everyone.
جب آپ ٹورانٹو آیا کریں تو ایک یہاں کا
ضرور, اب تو میں ضرور آؤں گی.
پیسے دو گے تو آؤں گی, ورنہ نہیں.
نہیں ایسے سب سے نہیں,
نو یہ ضرور کہیے گا.
اچھا
ان کو ضرور کہیے.
اچھا ہاں پیسے دو گے اور تھوڑے بہت نہیں, بہت سارے.
بہت سارے.
I love your personality. اتنا گریس ہے آپ کی پرسنالٹی میں,
یو
نو یو آر فل آف گریس.
اس کو تو ہٹا دو.
ٹاپ آف دا آور ول کم بیک ود دا نیوز. ہمارے ساتھ رہے.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یگس ٹاؤن ٹورانٹو.
آپ وہاں نہیں, لیکن جب آپ ریمٹلی کے ذریعے پیسے گھر بھیجتے ہیں تو آپ اپنوں کے پاس محسوس کرتے ہیں. بیٹی کی سالگرہ کے لیے یا کسی بھی موقع پر ریمٹلی آپ کو دیتا ہے تیز اور محفوظ ٹرانسفر کی سہولت اور فوری اپڈیٹ سے آپ اور آپ کے اپنوں کو ذہنی سکون. ریمٹلی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے پہلے ٹرانسفر پر خصوصی آفر سے فائدہ اٹھائیں. ریمٹلی.
ٹرکنگ والے ویرو تیار نال سنو, ٹرک جدان دا بھی چلانے ہو, مینوئل جا آٹومیٹک, کوئک ٹرک لیوب, چیتے آہی نہ رکھیو, ٹرک دی بڑیا سروس لئی کوئک ٹرک لیوب. لو جی تیجی لوکیشن بھی کھول دیا, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. آہو جی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں, ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. کوئک ٹرک لیوب دا ون سٹاپ شاپ. 519-622-0660 جا کوئک ٹرک لیوب .com. QTL, because we care.
ایک تیزی سے پھیلنے والا نیا ویریئنٹ اب اونٹاریو میں موجود ہے. ہمیں کووڈ 19 کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھنی چاہیے. ویکسین لگوائیں اور آج ہی اپنی بوسٹر بک کرائیں, اور وہ کرتے رہیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں, ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اپنے آپ کو کووڈ 19 سے محفوظ رکھیں. ontario.ca/covid19 پر مزید جانیں. حکومت اونٹاریو کی طرف سے ادائیگی کردہ.
اس مرتبہ تعطیلات کے دوران ویئر ہاؤس کے ملازمین اپنے کندھوں پر سامان اٹھا اٹھا کر لائیں گے,
और शॉपिंग खरीदारी में इजाफे के साथ ही ज्यादा मेहनत और ज्यादा रफ्तार से काम करना पड़ता है। जिस सके कनाडा की वेयरहाउस वर्कर यूनियन यूनिफोर जानती है कि अच्छी सेहत और सलामती का तहफ्फुज, मुनासिब उजरत, काम का बेहतरीन माहौल और इज्जत पाना वेयरहाउस मुलाजमीन का हक है। मजीद मालूमात के लिए warehouseworkersunite.ca पर विजिट करें और उर्दू जबान में मालूमात के लिए क्लिक करें।
सुन रहे हैं साज़ो आवाज़ ब्रॉडकास्टिंग 770 AM रेडियो डायल पर। अगर कहीं स्टैटिक है तो आप अपने सेल फोन पे डायल कीजिए और लिसन लाइव कीजिए 6478724900। हमारी वेब www.eawaz.com। टेलीविजन देखिए और रेडियो सुनिए।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000।
लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉक्सिंग डे मैच ते तुहाडा स्वागत है। मेरे सज्जे पासे है सोनी फर्नीचर दा आलीशान फर्नीचर ते मेरे खब्बे पासे है कोई भी नहीं। जानते हो क्यों?
हेलो एंड वेलकम जी टू न्यूज। अब आप सोच रहे होंगे कि आज माजिद भाई कहाँ हैं। आपको तो पता ही, अभी थोड़ी देर पहले जो इंटरव्यू एक हसीन खातून के साथ चल रहा था बदर खलील साहबा के साथ, बस माजिद भाई उनके पीछे ही निकल गए हैं। माजिद भाई का अब कोई दिल विल नहीं है काम करने को, लेकिन जनाब हम तो मजदूर लोग हैं, हमने तो काम करना है तो इसलिए हम इधर बैठे हुए हैं। ठीक है जी, चलो जी ठीक है, अब आपको लेके जाते हैं। जरा फ्लाइट पे बैठ जाएं, सीट बेल्ट अपनी फैसन करें, लेकिन उससे पहले हमारी वेबसाइट जो है बहुत ही प्यारी है, हमने आपको हमेशा बताया, उसके ऊपर जरूर जाएं और जो है उसमें www लगाने की जरूरत नहीं है, बस eawaz.com लिखेंगे तो आप उधर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, लाइव रेडियो सुने और लाइव टीवी देखें, ब्रेकिंग न्यूज, लोकल खबरें, फिर नीचे जो हैं हेल्थ, मेडिसिन, लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट की स्टोरियां और यूथ जोन में एज एंड वेन जब मैंने आपको बताया ये स्टोरीज आती हैं तो हम लगाते हैं कनाडा न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज। और राइट साइड पे आपको नजर आएंगे जनाब हमारे स्पॉन्सर्स, तो हमारे स्पॉन्सर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, और आज हमारे पास टाइम नहीं है दूसरों का बताने का, तो आज हम डायरेक्टली उस पे जा रहे हैं न्यूज पे। अच्छा जी, पहली जो हमारी सबसे बड़ी खबर ये है, आपको पता ही आज सुबह से ये था कि ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करेगी कुछ बेनिफिट्स, क्योंकि अब रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगाए हैं, नॉट रियली लॉकडाउन बट रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए हैं उसके लिए आज क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो है हमारी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने आज कुछ चीजें जो है वो डिटेल्स दी हैं। उन्होंने कहा जी कि हम चेंजेस कर रहे हैं लोकल लॉकडाउन प्रोग्राम एंड कनाडा वर्कर लॉकडाउन बेनिफिट का, और इसके अंदर जो है आपको जो लोग हैं अप्लाई कर सकते हैं कम इसके लिए 14 डेज के ऊपर, और ये जो है इंक्लूड करेगा एम्प्लॉयर्स उनके लिए जो कि कैपेसिटी लिमिटिंग रिस्ट्रिक्शंस जो आप 50% पे हैं उनके ऊपर जो है पूरा उतरते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा है कि हम करंट मंथली रेवेन्यू का जो है वो भी हमारा हम रिड्यूस कर रहे हैं, जिसका कि थ्रेशोल्ड था 40%, तो अब इसको 25% पे ला रहे हैं। एलिजिबल एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको वेज और रेंट जो है उसकी सब्सिडीज भी बिटवीन 25-75% मिलेंगी, क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने बताया आज। इसके अलावा उन्होंने कहा जी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे $300 अ वीक टू दोज एलिजिबल, आई मीन ऑफकोर्स जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, और ये चेंजेस जो हैं ये इफेक्टिव हैं December 19th से February 12th तक, तो इसका मतलब है कि ये यानी February 12th 2022 लेट मी बी क्लियर, ऐसा ना हो कि आप समझें और चार साल, तो ये लिमिटेड जो है ये आज उन्होंने पॉलिसी अपनी अनाउंस की है और बेनिफिट्स अनाउंस की हैं। बहरहाल फिर भी जो स्मॉल बिजनेसेस जो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे, स्पेशली जो कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में थे, उनको थोड़ी जो है इससे हेल्प मिलेगी। अच्छा जनाब, आज जो चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ हैं ऑन्टेरियो के अंदर डॉक्टर कायरन मोर, उन्होंने आज कहा है जी कि हम जो यंगस्टर्स हैं उनको कहना चाहते हैं कि वो बूस्टर्स के लिए जरा थोड़ा सा ठहर जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग 50 एंड अबव हैं या कि जो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज में हैं उनको ज्यादा मिले। वो कहते हैं जी इस वक्त हमारे पास 44,000, डॉक्टर मोर कहते हैं कि 44,000 टू 70,000 की हमारे पास पीसीआर टेस्टिंग ऑन डेली बेसिस की फैसिलिटी है, लेकिन ये अभी तक पूरी फुल कैपेसिटी में तो नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इससे पहले के आउटब्रेक को मैनेज करना मुश्किल हो जाए, हम जरा थोड़ा सा इसको लिमिट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम जो है कुछ लोगों को बताएं कि भाई आप जो है दोज हु आर कंटिन्यूइंग टू रिपोर्ट डेज लॉन्ग वेट, तो वो उनको जरा हम बता रहे हैं कि अगर आपको बहुत लंबे लंबे वो मिल रहे हैं वेट टाइम्स तो पीसीआर टेस्टिंग के लिए, तो आप जरा थोड़े से पीछे हट जाएं, यानी कि अगर आप नहीं कर रहे हैं कोई एसेंशियल ट्रैवल या कुछ, ताकि हम जो इंपॉर्टेंट डेज हैं या इंपॉर्टेंट जब इस तरह के आ जाएंगे कि जिसमें हमारे लिए मैनेज करना चीजों को मुश्किल हो जाएगा और हर किसी के लिए जरूरी हो जाएगा, उनको फिर हम ये फैसिलिटीज दे सकें, तो इसलिए जो है आज उन्होंने ये एक बात की है। अच्छा जी, इसी तरह की सिमिलर बात जो है आज पील मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉक्टर लॉरेंस लो जो है उन्होंने भी समवट सिमिलर चीजें कही हैं, लेकिन ये पीसीआर टेस्ट के बारे में नहीं है। डॉक्टर लॉरेंस ने कहा है कि हम यंग रेजिडेंट्स को कह रहे हैं कि वो बूस्टर्स के लिए रश ना करें और जो 50 एंड अबव हैं उनको पहले जाने दें, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो हैं अंटिल अर्ली फरवरी जो हैं बुकिंग्स हुई हुई हैं, और उसके अंदर हम ज्यादा एनकरेज कर रहे हैं कि यंगस्टर जिनको दो डोजेज लग गई हैं जरा थोड़ा सा पीछे हट जाएं बूस्टर शॉट से, ताकि जो ओल्डर पॉपुलेशन है उसको दी जा सके। और आज उसकी मिसाल डॉक्टर लॉरेंस लो ने यह दिया कि जब आप बस पे सफर कर रहे होते हैं तो अगर कोई बूढ़ा आदमी आ जाता है तो फिर आप, या कोई आदमी ऐसा जो है इन नीड है, तो आप अपनी सीट से उठ जाते हैं उसको जगह दे देते हैं, तो यू हैव टू डू द सेम इवन फॉर दैट। तो ये आज कुछ जो है गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं डिटेल्स के आपको कैसे अब आने वाले दिनों में जो है बिहेव करना है। अच्छा जनाब, साइंटिस्ट जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में, उन्होंने आज ओमिक्रॉन के बारे में बहुत सारी नई चीजें, फॉर द फर्स्ट टाइम एक कंप्लीट डाटा उन्होंने देने की कोशिश की है ओमिक्रॉन के ऊपर, और इसके अंदर उन्होंने जो अपनी रिसर्च की है वो इनको ये शो करती है कि ये जो वेरियंट है और ये बहुत जल्दी जो ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है, तो इसके लिए ये इसमें सबसे पहले तो ये देखा गया था कि ये जो अगर आप इम्यूनिटी सिस्टम भी आपके अंदर, तो इसको ये इवेड कर लेता है, तो इस इम्यूनिटी सिस्टम को अगर इवेड करता है तो ये होती क्या है, ये किस तरह का वेरियंट है। अच्छा, उसके लिए इन्होंने आज बताया है जो डेटा इन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया के साइंटिस्ट ने दिया है कि कायरो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और ये जो है माइक्रोस्कोप की तरह के छोटे हैं, और ये क्या करते हैं फ्लैश फ्रीजिंग स्टडी हमने जो इनके ऊपर की है तो ये हमें शो करती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, और वो कहते हैं जी कि ये फिर अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं, और बड़ी माइन्यूट डिटेल्स जो हैं इन्होंने साइंटिस्ट ने आज उसके ऊपर दी हैं, और उन्होंने कहा जी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये जो प्रोड्यूस करते हैं उनकी पिक्चर्स जो हैं वो भी आज इन्होंने कुछ जो है शो की हैं, जिससे कि पता चलता है कि इनका इसका इस वेरियंट का स्ट्रक्चर क्या है। अब ये जो स्टडी है इसको काफी इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, क्योंकि अब कहा जा सकता है कि इनकी जो प्रोटीन स्पाइक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर मॉडिफाई किया जा सकेगा वैक्सीन्स को भी। आज जनाब टीटीसी जो है उसने आज कहा है कि उनको कुछ इतलाएं मिली थी कि उनके जो 10 स्टेशन थे डिफरेंट सब स्टेशन सबवे स्टेशन उनको वेंडलाइज किया गया था, और ये जो स्टेशन थे ये बेफील्ड ब्रॉडव्यू चेस्टर डेविड्सविल जेन कील रे सॉरी पे क्वींस पिडाइना और शेपर्ड स्टेशन थे, और ये कहा गया था कि ये जितने भी ये जो स्टेशन को वेंडलाइज किया गया है इनको हम देखना चाहते हैं कि इसका सस्पेक्ट कौन है, तो उन्होंने एक वीडियो जो है वो भी अब एक डाउनलोड किया, और वो कह रहे हैं जी कि हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये परपेट्रेटर जो है ये कौन है, क्योंकि जाहिर है कि अब इसके ऊपर जो है बहुत सारे दिन लोग सफर नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसकी जो है फिक्सिंग अब चल रही है, तो उन्होंने कहा है जी कि ये 2 to 4 weeks इसमें लग सकते हैं। इसके अलावा जी ग्रीक अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने अब कहा है कि एजियन सी के अंदर एक बोट आ रही थी और वो कैप्साइज कर गई है, और उसके अंदर जो है 3 लोगों की डेथ हो गई और बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर मिसिंग हैं। तो इनका जो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन है ये चल रहा है। इसके अंदर 12 लोग जो कि वो कहते हैं कि वी बिलीव दे केम फ्रॉम इराक, उनको तो इन्फ्लेटेबल एक जो थी डिंजी उसके अंदर जो है वो सेव कर लिया गया ऑफ द आइलैंड ऑफ फॉलगैंड्रॉस इन एथेंस के पास ही है ये, और बाकी कुछ लोगों को हॉस्पिटल भी लेकर गए और बाकी जो कुछ लोग हैं उनकी तलाश जारी है। माजिद भाई, मैं ठीक हूँ, आपके जो हैं वो बालों के हेयर स्टाइल ठीक है?
आप बताएं मुझे, आप मेरा वो है, मिरर है।
अच्छा, मिरर है।
अगर मेरा, मैं हमेशा लोगों से कहा है कि जब भी अगर मेरा बालों का हेयर स्टाइल सही ना हो ना तो डोंट ब्लेम मी, ब्लेम
हर।
थैंक यू।
हाँ जी, असल में आज जो है ना मुझे नजर नहीं आ रहे आपके बालों के हेयर स्टाइल, उसकी वजह यह है कि आपकी कमीज का कलर इतना शॉकिंग ब्लू है। हाँ। ये जो इलेक्ट्रिक ब्लू आपने जो पहना हुआ है ये इतना रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरी आंखों में कि मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे ठीक से।
काला चश्मा पहन के आया करें
बस। मैंने वो काला चश्मा पहना ना तो लोग गाना गाएंगे गुरी गुरी मुकड़ी भी काला काला चश्मा।
मैं देखा, मैं काला चश्मा कब पहनता हूँ जब अपने हीरो के सारे
पहन के आते हैं
तो फिर मुझे काला चश्मा पहनना पड़ता है।
अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, ओके माई सही। तो वो जो है हमने आपकी एब्सेंस में कुछ खबरें शुरू कर दी थी, अब आपके साथ शुरू करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा माई भाई, डच प्रोसिक्यूटर्स जो हैं आज उन्होंने कहा है कि 4 सस्पेक्ट्स जिनके कि इन्होंने नाम लिए हैं कि ये जो मलेशियन एयरलाइनर था MH17 इसको इन्होंने मार के गिराया था, तो इनको पकड़ने की जनाब जरूरत है। अच्छा, इसमें इन्होंने नाम किसका लिया? इन्होंने नाम लिया है रशियन इगोर गिरकिन, सर्जे डुबिंस्की, इगोर पुलटोव और जो यूक्रेनियन लियोनार्ड खर्शेको है। वो कहते हैं जी ये सारे के सारे सेपरेटिस्ट रेबल्स हैं और कोई इनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये कहें कि जी वो दूसरे लोगों का कोई तैयारा आ रहा था, ये सिविलियन तैयारा था। सिविलियन तैयारे और मिलिट्री तैयारे जो होते हैं उनके अंदर डिस्टिंक्शन होती है। तो इन्होंने उसको यूक्रेनियन प्लेन को मार के गिराया है, अपना जो भी कोई मिसल सिस्टम या जो भी यूज किया है, तो इनको सजा देने की जरूरत है। तो आज इन्होंने जो बाकी के भी जो हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर लोग भी, उनको भी आज ये अपना प्रपोजल दिया है कि इन लोगों को पकड़ के करें, क्योंकि ये आपको पता ही है कि ये तैयारा जो था इसके अंदर 298 पैसेंजर्स थे।
Exactly.
और जब इसको मार के गिराया तो सबकी डेथ हो गई थी इसमें। तो उन्होंने कहा जी कि ये इनको सजा देने की बहुत जरूरी है, दिस शुड बी कंसिडर्ड एज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो अब ये देखेंगे इसके अंदर क्या होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है यूनाइटेड नेशंस का, जिसने बहुत ही दुखी एक खबर की है, उसने कहा जी कि हम आज तक तो जो है यमन को बचा रहे थे, उसको हम बहुत सारा जो है वो खाने वाने का दे रहे थे, फूड दे रहे थे, लेकिन अब हमारे पास फंड्स ही नहीं है कि हम इनको जो है फूड एड दे सकें। और इन्होंने कहा था कि जी इस वायलेंस के अंदर तकरीबन 377,000 लोगों की तो डेथ हो गई है और 4 मिलियन डिस्प्लेस्ड हैं। तो ये जो डिस्प्लेस्ड हैं और वो जो उसके अंदर जिंदा हैं लोग, तो उसके ऊपर हम 11.1 मिलियन के करीब जो है फूड असिस्टेंस देते रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं है इनको कुछ देने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि ये सारे लोग जो हैं, वो कहते हैं जी हमने सेप्टेंबर से ही कहना शुरू कर दिया था कि एटलीस्ट 16 मिलियन जो ये लोग होंगे ये स्टार्वेशन में चले जाएंगे, तो हमारी जो एजेंसी है उसको पैसे दें। अब उन्होंने नहीं दिया तो हम ये कंटिन्यू नहीं रख सकेंगे। तो ये आज उन्होंने बहुत ही जो है वो
मुसीबत के ऊपर मुसीबत,
यस मुसीबत पे मुसीबत, ग्लूमी पिक्चर जो है पेश की है। नाइजीरिया के अंदर जनाब आज एक बहुत ही अफसोस का वाकया हुआ, और यहां पे ये हुआ कि जो फार्मर्स थे और हर्डर्स थे उनके बीच में लड़ाई हुई, फिर उसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो आ गए, पुलिस यानी कि पुलिस वगैरह आ गई, उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली 45 फार्मर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई है। और ये देखें आज इन सबके जो हैं यहां पे जो है कुछ के नमाज जनाजा पड़े जा रहे थे और कुछ के जो थे कुछ को जो है वो चर्च में लेके जाया गया था। तो ये इसको जो है सारी दुनिया सेंसलेस और बारबेरिक इंसिडेंट कह रही है, और जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अब कहा है कि अब हम जो है ये सारे जो लोग जिन्होंने ये सारा कुछ ये जो की है, एथनिक ग्रुप्स जो हैं टीव के अंदर और बाकी के जो फुलानी हर्डर्स हैं इनके बीच में ये जो लड़ाई हुई थी, तो इसके हम पूरी इन्वेस्टिगेशन बचाएंगे और जो कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा उसको जो है यहां पे सजा दी।
एक चीज है, आप अगर देखें हमें तस्वीर दोबारा लगाना कि
जी
यहाँ पर हार्डली 2 या 3 लोगों ने, सैकड़ों का मजमा है
जी,
2 या 3 लोगों ने सिर्फ मास्क लगाया हुआ है, बाकी किसी ने
भी नहीं लगाया हुआ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल,
यहाँ पर वो उनका इतना डर नहीं है,
नहीं है नहीं है इनके मतलब मजमा, क्योंकि आज की भी जो नई स्टडी आई है ना ओमिक्रॉन के ऊपर वो यही है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी, यू नो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी, कि आप कितनी जो है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इसीलिए आपको पता है कि यहां पे तो नहीं, इन मुल्कों में तो नहीं, वो तो कहते हैं वो अननेसेसरी मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे मुल्कों में डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप रोजाना की एक अगर विटामिन सी की गोली खाएं, अगर मल्टी आपको अवेलेबल नहीं है तो वो आपको काफी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है.
Exactly.
तो आई नो पर्सनली अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स हु टेक अ पिल ऑफ विटामिन सी एवरी से, या तो एफरवेसेंट लेते हैं पानी में घोल के वो पी लेते हैं, या फिर जो है दूसरी वो च्यू वाली होती है वो च्यू करते हैं. तो दैट्स वाई परहैप्स हमारे लोगों की जरा इम्यूनिटी अच्छी है.
ठीक,
तो ऐसे है. ठीक है जी. अच्छा जी, अच्छा जनाब, यूरोपियन जो यूनियन है उसने आज फिर से एक दफा जो है उनकी जो यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन है उन्होंने आज कहा है कि जो शेल कंपनीज हैं ये जो बहुत ही गलत किस्म की जो हरकतों में इन्वॉल्व होते हैं, इनकी एक्टिविटीज भी ठीक नहीं है, देन दे इवेड टैक्सेस, तो इनको जो है अंडर द ब्रैकेट ऑफ टैक्स लाने की जरूरत है. आज जो यूरोपियन यूनियन की कमीशन है उसने जो अपना 27 ब्लॉक का जो मेंबर नेशन का जो ब्लॉक है उसको कहा है कि भाई ऐसे लॉज बनाएं आप और ऐसे एक सिस्टम करें, ऐसा फिल्टरिंग सिस्टम बनाएं कि जिसके अंडर ये जो शेल कंपनीज हैं ये अब अपने टैक्सेस ना बचा सकें, यानी कि चोरी ना कर सकें, जो टैक्सेस जो चीज चोरी ये लोग करते हैं ये ना कर सकें, और ये जो अवॉइड कर लेते हैं और ये फिर इवेड कर लेते हैं और बहुत सारे तरीके उन्होंने सीखे होते हैं टैक्सेस ना देने के, तो उसके लिए एक हमको कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरी सिस्टम बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, ताकि ये सारे लोग जो पैसे लेके खा जाते हैं वो जो है नेशनल इकोनॉमी के अंदर आए. वो अब ये सारी बातें इसलिए आ रही है ना कि अब ये जो वायरसेस पिछले 2 साल से जिन्होंने तबाही मचाई हुई है दुनिया में, तो इकोनॉमी बिल्कुल नीचे 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 जा रही है पूरी दुनिया में. तो दूसरी तरफ ये लोग देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले कि जी कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग, जस्ट फ्यू कंपनीज और फ्यू इंडिविजुअल्स, दे आर बिकमिंग रिचर एंड रिचर एंड रिचर. तो भाई ये कैसे है? तो वो मोस्टली जैसे कि ये पीछे रिपोर्ट भी आई थी अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में कि जो जितने भी खासतौर पे जैसे अब वो तो एक ही कंट्री का उन्होंने बताया ना कि अमेरिका में जो रिचेस्ट पीपल हैं वो टैक्सेस बहुत ही कम देते हैं या कुछ तो देते भी नहीं है. राइट. अब तो आम आदमी, तो अब ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जिनकी वर्थ है अगर वही टैक्सेस नहीं देंगे तो फिर इकोनॉमीज कैसे चलेंगी? तो इसलिए अब ये सारी बातें जो है ना शुरू हो गई हैं कि भाई इकोनॉमी का क्रंच है और नहीं कैश का क्रंच है और इकोनॉमीज जो है वो मेल्ट डाउन कर रही हैं, तो अब पैसे चाहिए. तो अब ये जो टैक्सेस छुपा रहे हैं इनसे आप पैसे निकलवाओ, टैक्सेस के पैसे दें ताकि हमारी जो इकोनॉमीज चले.
और ये सिर्फ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, शायद
पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में जी जी
अमीर कभी टैक्स नहीं देता.
नहीं देता. हाँ जी, हाँ जी, या बहुत ही कम देंगे. अच्छा जी, ब्रिटिश एमपीज जो हैं आज उन्होंने आज फिर से इंग्लैंड के अंदर एक मोर्चा निकाला हुआ था और उन्होंने कहा है कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इंडिया के अंदर चल रही हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में खासतौर पर जो चल रही हैं उनके ऊपर जो है ध्यान देने की जरूरत है. खासतौर पर यहां पर एक लेटर लिखा है डेबी एब्राहम्स ने, और ये जो है एमपी है फ्रॉम ओल्डम ईस्ट एंड सैडलवर्थ और चेयर हैं ये कश्मीर ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप की. तो इन्होंने कहा है कि खास तौर पे ये जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है खुरम परवेज, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि ये कहां पे है, और जो है मुसलमानों के खिलाफ जो वहां पे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जुल्म चल रहे हैं और ये जो वायलेशंस हो रही हैं ह्यूमन राइट्स की, इसके ऊपर एक प्रोब बिठाने की जरूरत है. आज ये लोग लंदन में जो इंडियन हाई कमीशन है उसके बाहर ये लोग सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां पे खड़े हुए थे, और इन्होंने जो है ये कहा है कि यहां पे ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है कि ये सब लोग जो गायब हो जाते हैं और फिर उसके बाद इनका पता नहीं चलता है, तो यहां पे जो है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए जिससे कि पता चले. यहां पे ये उन्होंने कभी बात कही एमपीज ने कि 108 मैजिस्टीरियल प्रोब्स जो थी वो ऑर्डर की गई थी जो कि सिंस 2008 से की जा रही हैं, लेकिन उसके अंदर ना तो कोई पकड़ा गया बंदा, ना कोई कन्विक्शन हुई है, ना उसको सामने लाया गया है. पकड़ के या तो उसको मार दिया जाता है या ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है या जेलों में, तो उसका कुछ पता नहीं चलता है. तो ना तो वो अदालतों में आते हैं ना उनका पता चलता है, तो इन सब चीजों को प्रूव करने की जरूरत है. इसराइल ने जनाब आज अनाउंस किया है कि उसकी जितनी भी पॉपुलेशन 60 एंड अबव है उसको फोर्थ डोज,
फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड
फर्स्ट कंट्री, हाँ जी, फोर्थ डोज उसको लगाई जा रही है.
थर्ड का भी उन्होंने शुरू किया था.
यस,
फोर्थ का भी उन्होंने शुरू किया. दे नो समथिंग, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं दे नो समथिंग, सो उन्होंने फोर्थ का भी शुरू कर दी
क्योंकि रिसर्च बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे इसराइल के अंदर ना, बहुत होती है. हेल्थ मिनिस्ट्री जो इनकी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी और उसके बाद से अब ये शुरू हो गया है. तो प्राइम मिनिस्टर नेफ्टैली बेनेट जो है उन्होंने भी बड़ा इसको वेलकम किया इस मूव को, और उन्होंने कहा जी कि मैसेज इज वेरी क्लियर और ये देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, तो इसलिए प्लीज गो गेट वैक्सीनेटेड एवरीबडी. तो अब ये फोर्थ जो है वैक्सीनेशन जो है इन्होंने देनी शुरू कर दी है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन जो है जी, उनकी आज मुलाकात हुई है इनके साथ, यही नफ्टाली बैनट के साथ, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगेन मुद्दा ईरान ही था, क्योंकि ये इनके ऊपर अब जरा इनको खुश करना चाहते हैं, क्योंकि इसराइल काफी नाराज हो गया है, यूरोपियन यूनियन से तो डेफिनेटली नाराज है। यूएस तो आपको पता है वो ईरान टॉक्स में बैठ ही नहीं सकता था, क्योंकि ईरान ने कहा था ये बैठेगा अगर तो हम बात नहीं करेंगे, तो वो तो बैठे ही हुए नहीं है। तो इन्होंने आज मुलाकातें की हैं नेफ्टाली बेनेट से, और उन्होंने कहा है कि भाई हमारा हमेशा से कंसर्न था कि ईरान जो है वो एज अ स्पॉयलर बिहेव कर रहा है इस रीजन के अंदर, और उसके जो डिफेंस सिस्टम्स और ये सारे जो वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना रहे हैं जो हमें इंटेलिजेंस मिली है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो आज ये जो जेक सलिवन साहब इनके साथ मिले हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं जी पायन तुसी फिक्र ना करो, हम आपके पीछे खड़े हैं, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। और ये जो डील है जिसमें से कि आपको पता है ये 2018 में जनाब ट्रंप साहब बाहर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि सैंक्शन ज्यादा और लगाने की तेहरान पे जरूरत है, लेकिन जो बाकी की फोर्सेस जो हैं वो अब यूरोप की बैठी हुई हैं इनके साथ, ईरान के साथ, और वियना के अंदर टॉक्स चल रही है, और वो कह रहे हैं कि नहीं हमको इनके साथ टॉक्स करने जरूरी है। तो ये इस सिलसिले में आज इनकी थी कि वो कह रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, वी विल मेक श्योर कि ईरान आपके ऊपर कोई अटैक्स ना करे या कोई ऐसे वेपन्स ना डेवलप करे जिससे कि आपको जो है खतरा हो सकता है। अच्छा जी, फिर क्या हो रहा था, टिट फॉर टैट होना ही था, आप मुझे चांटा मारेंगे तो आजकल का तो वो समाना नहीं है कि हम चुप बैठेंगे, हम भी मारेंगे। फिर यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे चाइनीज कंपनीज के ऊपर, और बार बार सारी दुनिया में नाचता फिर रहा हमारा अंकल सैम कि जी इनके ऊपर सैंक्शंस लगाओ, तो ये है तो वो है, क्योंकि जिंगजियांग के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो कि सिर्फ चाइना में हो रहे हैं और दुनिया के किसी हिस्से में नहीं हो रहे हैं जी, जिसमें कि वीगर मुसलमानों को मारा जा रहा है और कहीं मुसलमानों को नहीं मारा जा रहा, तो इनके ऊपर जो है सैंक्शंस लगाए। तो आज जो चाइना है, चाइना के जो है इसके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन झाओ लीजियान, उन्होंने भी आज कहा है जी कि हम भी इन रिटेलिएशन, अब जो आपने हमारी कंपनीज और इंडिविजुअल्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, हम भी अमेरिकन कंपनीज और इंडिविजुअल्स के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, और इसके अंदर जो लोग शामिल हैं वो हैं जो है एक पूरा वो है ग्रुप है, चेयरवुमन है एक तो नदीन मेंजा, डेप्यूटी चेयरमैन है नूरी तुर्कल, अरुरीमा भरगावा और जेम्स कर, ये सारे अमेरिकन नेशनल्स हैं। तो इनके ऊपर उन्होंने जी अब सैंक्शंस लगा दिए, उन्होंने कहा कि ये कोई भी ना तो विजिट कर सकेंगे चाइना, ना हांगकांग, ना मकाओ, और इनके साथ कोई भी, ये यूएस पैनल है पूरा जो कि ये इन सारी चीजों के ऊपर काम करता है, तो उन्होंने कहा जी ये पूरे का पूरा पैनल अब बिल्कुल चाइना ना विजिट कर सकता है, ना हमारी बात है बैन इनके ऊपर। और दूसरी बात यह है कि अमरीका के अंदर ये चीज भी अब जोर पकड़ गई है कि वो कह रहे हैं कि बीजिंग ओलंपिक्स जो अभी फरवरी में होने वाले हैं उनको भी आप करें बायकॉट, तो अभी तक कुछ उनका फैसला तो नहीं आया है अमरीकन गवर्नमेंट का, लेकिन देखें शायद आने वाले दिनों में। तो यह मतलब है कि लड़ाई बहुत गंभीर हो गई है। ठीक है जी। अच्छा जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है जी, आज उसने फॉर अ चेंज बिल्कुल ये प्रपोजल जो है पास कर लिया है कि यस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान में है और हमको अफगानिस्तान की हेल्प करने की जरूरत है।
दैट्स अ फर्स्ट स्टेप
किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ओके, तो ये बहुत बड़ी जो है जीत है पाकिस्तान की, जो अभी OIC की मीटिंग भी उन्होंने कराई थी। तो इन्होंने कहा है जी कि हम गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं इनको ऑफर करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि बहुत डीप होता जा रहा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी वहां पे काम कर रही हैं वो भी इनको इतला दे रही थी, लेकिन उन्होंने अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि ये जो यूएस ने 9.5 बिलियन के जो एसेट्स अफगानिस्तान के जो इनका जो सेंट्रल बैंक है उसके जो किए हुए हैं फ्रीज क्या वो अनफ्रीज करेंगे कि नहीं। बहरहाल उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि हम इसको जो है हेल्प करेंगे अब अफगानिस्तान को। इंडिया के अंदर जनाब ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं उन्होंने आज दिल्ली के अंदर मार्च किया, और इसको जो है हेड कर रहे थे राहुल गांधी जी कांग्रेस के लीडर, और उसके उनके साथ और भी बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स थे दिल्ली के अंदर। और इन्होंने कहा जी कि ये जो है इनका मेन मुद्दा यह था कि जिस वक्त तक ये जो हैं मिनिस्टर आपके यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा इनको सैक किया जाए, ये लखीमपुर खीरी के किस्से में जिसमें कि आपको पता ही है कि कुछ लोगों ने कहा था अलेजली इनका बेटा और लोगों ने इनकी गाड़ी फार्मर्स के ऊपर चढ़ा दी थी और उसमें फार्मर्स की डेथ हो गई थी, तो ऑपोजिशन ने कहा जी फौरन अजय मिश्रा को जो है सैक किया जाए, और इसके अलावा जो 12 MPs जो हैं राज्यसभा के जिनको के निकाल दिया सस्पेंड कर दिया गया था कि वो अब विंटर सेशन में नहीं बैठेंगे उनको फौरन रिस्टोर किया जाए, और अगर नहीं किया जाएगा तो हम अपना ये मार्च जो है प्रोटेस्ट मार्च जारी रखेंगे। तो अब देखेंगे कि अब ये इसके ऊपर जो है क्या होगा। अच्छा जी, आज द वायर की एक स्टोरी है, और ये वायर की स्टोरी जो है एक दफा से फिर बहुत ही یعنی چونکا دینے والی ہے, کیونکہ جیسے کہ ہماری اپنی کینیڈین گورنمنٹ بھی جو ہے انی بیٹھی ہوئی ہے بالکل, اور امریکہ بھی بالکل جو ہے انا بیٹھا ہوا ہے. ہیومن رائٹس وائلیشنز ان کو دنیا کے کسی حصے میں نہیں نظر آ رہے سوائے چائنا کے. تو اب جو ہے یہ ایک وائر کی بڑی وہ سٹوری ہے. اچھا جی, وہ کہتے ہیں کہ دھرما سنسد جو آرگنائزیشن ہے اس کے اس میں جو ان کے ایک سوامی ہے سوامی پرابودھا آنند گری, انہوں نے جی جو ہے ایک وہاں پہ بڑی ہی ہیٹ سپیچ دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میانمار میں ہندوؤں کو پکڑ پکڑ کے مارا گیا, دلی کے بارڈر پہ بھی وہ جہاں پہ بےچارے وہ کسان بیٹھے تھے ادھر بھی ہندوؤں کو مارا اور لٹکایا گیا, اور انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جی ان سب لوگوں کے خلاف جو ہے ان جنہوں نے ان کو مارا ہے ان کے خلاف جو ہے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا. اچھا اب جو ان کے جو اگر 2018 کے بھی کامنٹس لیے جائیں تو ان کو مارا جائے کا کیا مطلب ہے, کہ اس میں انہوں نے اس وقت بہت زیادہ کلیئر کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی کہ دنیا کے اندر ہم کو یہ جو جہادی ہیں یعنی کہ مسلمان ڈیفینیٹلی ان کو مینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر دنیا کو جہادیوں سے کلین نہ کیا گیا, کیونکہ یہ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ اسلام کے کو جو فالو کرتے ہیں لوگ وہ ریپسٹ ہوتے ہیں اور وہ جہادی ہی پیدا ہوتے ہیں جو اسلام کے انڈر لوگ پیدا ہوتے ہیں, تو یہ اگر ان کو یہ بڑھتے چلے گئے تو یہ ٹیررزم اور یہ جو ہیں چیزیں اس کو ہم ختم نہیں کر سکیں گے, تو ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جہادی اگر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ڈرا دیا تو انہوں نے ہمیں ڈرایا نہیں ہے, ہمیں اگر مار بھی دیں گے تو اور کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئیں گے جو ان کی ان حرکتوں کو روکیں گے, اور ہندوستان میں پھر لاشیں ہی لاشیں بچھیں گی اور پھر کوئی بھی اس چیز کو سٹاپ نہیں کر سکے گا. تو دا وائر کی یہ جو سٹوری ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ ہندوستان جو ایک سیکولر کنٹری ہے تو اس کے اندر اس طرح کے ہیٹ سپیچز جو ہیں اس کا اس کو کیسے ٹالریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ آج ان کا بہت بڑا جو ہے وہ آیا ہے. اچھا جی, کیا ہوا تھا ڈسمبر 20th کو, یعنی ابھی دو دن پہلے, انڈین گورنمنٹ نے جو انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہے وہاں پہ ایک ڈی لمیٹیشن کمیشن قائم کیا تھا, اور ان کو کہا تھا کہ بھئی آپ کچھ سیٹیں جموں اور کشمیر میں بڑھا دیں. اب کیا ہے کہ جموں کے اندر 6 سیٹیں بڑھا دی ہیں اور کشمیر میں صرف ایک ہی سیٹ بڑھائی ہے, اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں ایکسپرٹ وہاں کے کہ یہ انہوں نے جو میپ ہے اس کو اس کا چینج کرنے کی کوشش کی ہے, جموں اور کشمیر کی پولیٹیکل میپ ظاہر ہے چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا جی, اب اس سلسلے میں کچھ میڈیا ہاؤسز نے یہ جو کانگریس کے لیڈر ہیں اور ایکس یونین منسٹر ہیں سیف الدین سوز, ان سے انٹرویو لیا ہے. تو سیف الدین سوز سے انہوں نے پوچھا ہے میڈیا والوں نے کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں یہ جو ڈی لمیٹیشن کمیشن آیا ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بی جے پی اور یہ جو آر ایس ایس والے ہیں جب یہ جو یہ چاہتے ہیں جو کہ یہ کرنا چاہتے تھے جب انہوں نے ریووک کیا تھا آرٹیکل جو ہے 370, تو جب وہ مقصد یہ حاصل نہیں کر سکے تو اب یہ کیا کر رہے ہیں, اب یہ لوگوں کو خرید رہے ہیں, اب لوگوں کو پیسہ دے کے یہ خرید رہے ہیں, یہ سوز صاحب کہہ رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ان کو پرچیز کر رہے ہیں ٹو اسٹیبلش دیئر اون گراؤنڈ ان دا ویلی, تو ویلی کے لوگ جو ہیں اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو الیکشن میں جیتنا پڑے گا, اور اگر الیکشنز کے اندر ان کو ہکار دیا گیا ہے جیسے کہ ابھی لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی جگہ ویلی میں نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں تو اس لیے اب یہ لوکلز کو پیسے دے دے کے خرید رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں جی بی جے پی کی جو سیٹیں ہیں اس کے اوپر تم لڑو. تو وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ ویلی کے لوگ اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بی بی سی کی آج ایک رپورٹ آئی ہے جی, اور بی بی سی نے یہ جو سارا ڈیٹا ہے یہ انڈیا کے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو سے اٹھایا ہے, اور یہ بہت ہی اگین آنکھیں جو ہے کھولنے والا ہے, آپ کے آئی بالز باہر آ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا ہیز رپورٹڈ دا ہائیسٹ نمبرز آف سوئسائڈز آف ہاؤس وائفز ان دا ورلڈ گلوبلی سب سے ہائیسٹ ان کا نمبر ہے. اچھا جی, یہ ان کا کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ لاسٹ ایئر میں صرف 22,372 ہاؤس وائف جو تھیں انہوں نے سوئسائڈ کمٹ کیا ہے, وچ مینس این ایوریج آف 61 سوئسائڈ ایوری ڈے, یعنی کہ 1 after every 25 minutes. تو وہ کہتے ہیں جی یہ نمبر بے انتہا ہائی ہے, مرد بھی کرتے ہیں لیکن 36% آف ویمن بٹوین دا ایج آف 15 and 39 کمٹ کرتی ہیں سوئسائڈ, اور جو ہیں مرد جو ہیں وہ جو ہیں تھوڑے اس کے بعد ہیں. تو اس میں انہوں نے ایک انٹرویو لیا تھا بی بی سی نے ڈاکٹر اوشا ورما شری واستوا کا جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور کام کرتی ہیں وارانسی میں. تو وہ انہوں نے پوچھا بی بی سی والوں نے کہ جی اس کی مین وجہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ 18 سال میں لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے, وہ جھاڑو ٹاٹ برتن سسرال کی خدمتیں, بچے پیدا کرنے, یہی کرتی رہتی ہے وہ. اس کو اس کے اوپر ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, وہ گھر سے بھی نہیں جا سکتی, نہ اپنا کوئی سدھار کر سکتی ہے نہ کچھ. موسٹلی ناٹ ایوری وومن ان انڈیا بٹ موسٹلی یہ ہوتا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے اس کے اپنی جو ڈریمز ہوتی ہیں وہ تو مری جاتی ہیں, اور کوئی اس کے پاس ایسے پیسے ویسے بھی نہیں ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی جو ویری ایگزسٹنس ہے وہی ایک ٹارچر بن کے رہ گئی ہے. تو اس کی وجہ سے اس کو اور چونکہ کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا ہے, تو وہ پھر جو ہے سوئسائڈ کمٹ کر لیتی ہے. تو یہ جناب اس کے اوپر ہے. پاکستان کے اندر جی جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان سے ملاقات کر رہی تھیں جو ہیں ایک یورپین یونین سے آئی ہوئی جو ہیں اسالا روان ویراکون, اور وہ ان کو کہہ رہی تھیں کہ آپ سارک کی میٹنگ پاکستان میں کیوں نہیں کراتے ہیں, کیونکہ آپ نے بہت ابھی سکسیسفل او ای سی کی میٹنگ کرائی ہے. تو شاہ محمود قریشی جو فارن منسٹر ہیں پاکستان کے, انہوں نے کہا جی ہم بالکل اس کو کروا سکتے ہیں اگر یہ جو آرٹیفیشل آبسٹیکلز جو راستے میں ڈال دی جاتی ہیں اس کو ریموو کیا جائے. وہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان نے 2016 میں سارک کی میٹنگ بلانے کی کوشش کی تھی لیکن انڈیا نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے. اور سارک جو ہے اس کا مین جو ایک کانسٹیٹیوشن ہم نے لکھا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک ممبر نہیں اٹینڈ کرے گا تو کوئی بھی اٹینڈ نہیں کرے گا. تو اگر یہ مشکلیں جو ہیں حل ہو جائیں تو ہم بالکل ڈیفینیٹلی جو ہے سارک کی میٹنگ بھی یہاں پہ کرا سکتے ہیں. یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں جی وہ آج پاکستان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. اینتھنی بلنکن صاحب پھر سے پیار ہو گیا پاکستان سے. انہوں نے کہا جی پاکستان نے یہ جو زبردست او آئی سی کی جو کاؤنسل آف فارن منسٹرز بلائی تھی افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے, ہم ان کو بڑی شاباشی دیکھتے ہیں, یہ بڑی جو ہے پروڈکٹیو میٹنگ تھی اور جو ہے امریکہ بڑا ان سے خوش ہے. اس کے علاوہ یو ایس اسپیشل ریپرزینٹیو ٹامس ویسٹ نے بھی پاکستان کی بڑی تعریفیں کی تھی. ای یو کے جو امبیسڈر ان پاکستان ہیں اینڈرولا کمینارا, انہوں نے بھی بڑی تعریفیں کی. انہوں نے کہا جی کہ ای یو جو ہے 300 million euros جو ہے ہیومینیٹیرین ایڈ اب دے گا افغانستان کو, تو یہ بڑی آپ نے اچھی جو ہے وہ اچھا کام کیا ہے. اس کے علاوہ جو یو کے ہائی کمشنر ہیں اسلام آباد کرسچن ٹرنر, یو این کے انڈر سیکرٹری گینفر ہیومینیٹیرین افیئرز اینڈ ایمرجنسی ریلیف کوآرڈینیٹر, ملیشیا کے فارن منسٹر ڈاٹو, ان سب نے بھی پاکستان کی بہت زیادہ تعریفیں کی ہیں او آئی سی کی میٹنگ جو افغانستان پہ کی گئی تھی اس کے اوپر. اچھا جی آج ای سی پی جو تھے اس کے سامنے ہمارے دو منسٹر فواد چودھری صاحب اور ریلویز کے منسٹر جو ہیں اعظم سواتی صاحب آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے آج معافی مانگی ای سی سے یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, اور انہوں نے کچھ کامنٹس دیے تھے کہ یہ بڑا کرپٹ ادارہ ہے. تو انہوں نے بڑا جن کو جھاڑا, انہوں نے کہا کہ یہ ادارے آپ کے انڈر ہیں تو اگر آپ ہی ان اداروں کو بیڈ کہیں گے تو لوگوں کا جو ہے ہمارے پہ کیا رہے گا,
اعتبار نہیں رہے گا.
تو بہرحال جی انہوں نے بڑے ای سی بی کو, انہوں نے جب ان کی اپالوجی ایکسیپٹ کر لی تو انہوں نے بڑی تعریف کی, اور انہوں نے کہا جی ہم اس ادارے کو فردر جو ہے امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا جی کہ لوکل باڈیز کے جو الیکشنز کے پی کے اندر ہوئے ہیں اور لوگ بڑا ہمیں کہہ رہے ہیں او پی ٹی آئی تو اپنی یہاں پہ میجورٹی نہیں رکھ سکی, دے مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم نے ایک ڈیموکریٹک سسٹم اس ملک میں فار دا فرسٹ ٹائم ان 74 years ہم نے سیٹ اپ کیا ہے, جس میں ضروری نہیں ہے کہ رولنگ پارٹی کا بندہ ہی ہمیشہ جیتے گا, کبھی دوسرے بھی جیتیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں پہ ہم نے کچھ غلطیاں کی تھیں جس کو کہ ہم سدھارنے کی کوشش کریں گے, لیکن اب یہ جو سکسیسفل یہاں پہ یہ جو الیکشنز کے پی میں ہوئے ہیں یہ ڈائریکٹلی تحصیل نظام جو ہیں ناظم تحصیل کے لیول پہ ناظم جو ہیں ان کو الیکٹ کریں گے, اور یہاں پہ گورننس جو ہے وہ بیٹر ہوئے گی اور اس سے کریٹ ہوئیں گے فیوچر کے لیڈرز. اینڈ جناب آج بہت ہی ایک مزے کی خبر تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے, وہ یہ ہے کہ رائن رونلڈز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے ہمیشہ سمجھا جاتا ہے, میں نیو یارک میں ایک پیزا ہاؤس میں جاتا ہوں تو ہمیشہ مجھے لوگ وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ میں بین ایفلیک ہوں اور بڑے پیار محبت سے مجھے ملتے ہیں اور پھر میرے سے پوچھتے ہیں ہاؤ از جے لو. تو وہ کہتے ہیں میں ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ مجھے لگتا ہے شاید ان کا دل ٹوٹ جائے گا, کیونکہ ان کو شاید جو ہے بین ایفلیک سے بڑا پیار ہے. وہ کہتے ہیں میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں یس شی از گڈ شی از گریٹ, میں اپنا پیزا لیتا ہوں چلا جاتا ہوں. اور جناب دیپیکا پاڈوکون اور رنویر سنگھ کی جو مووی 1983 کا جو ورلڈ کپ کرکٹ کا جیتا تھا انڈیا نے, اس کے اوپر جو بنائی گئی ہے اس کے اوپر آج جو تھا ریڈ کارپٹ کی تھا اور سکریننگ تھی اس کی. تو یہاں پہ کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور اس میں رنویر اور دیپیکا اور ان کی فیملیز بھی آئی ہوئی تھیں اور کافی سیلیبریٹیز جو تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ ساری تصویریں ڈالی ہیں تو لوگ جو ہیں کافی جو ہے وہ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں, ان کو لگ نہیں رہا کہ یہ رنویر سنگھ ہے جو کپل دیو بنا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مووی میں بس یہی لگ رہا ہے کہ شاید کپل دیو خود ہی کھیل رہا ہے, اتنی زبردست اس کی ٹرانسفارمیشن کی ہے. ہاں جی. اور جناب سارا علی خان جو ہیں انہوں نے کرن جوہر کو حیران کر دیا. ان کی جو مووی ایک آنے والی ہے اترنگی رے, اس کا ایک گانا ہے چکا چک,
तो ये जो है वो इनका इंटरव्यू एक ले रहे थे, तो इन्होंने सारा अली खान ने कहा कि हम इतने भाग दौड़ में थे और इतने बिजी थे कि मुझे और कोई जगह नहीं मिलती थी अपना ये गाना चकाचक जो है वो उसको प्रैक्टिस करने की, तो मैं तुम्हारे बाथरूम में जाके करती थी वो। तो जो है ये बड़े हैरान हो गए जो है करण जौहर। एंड जनाब NHL हैज अनाउंस कि उनका कोई भी प्लेयर 2022 बीजिंग ओलंपिक्स में नहीं जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी सिंस डिसंबर 13-45 अपनी गेम्स जो हैं वो कैंसिल कर चुके हैं, और हमने जो अग्रीमेंट लिखा था वो हमने यही कहा था कि अगर वायरस की कंडीशन बैड ना हुई तो हम अटेंड करेंगे, अगर बैड हुई तो फिर हम नहीं करेंगे। एंड जनाब एब्सोल्यूटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट बाबर आजम। ही हैज अगेन टच्ड द एंड ही हैज रीच्ड द टॉप पोजिशन इन ICC मेन्स T20 बैटिंग रैंकिंग्स, और अब ये डेविड मिलान के साथ जो कि लास्ट वीक ऊपर आ गए थे इनसे, उनके साथ 805 पॉइंट्स पे इकट्ठे हैं। और इसके अलावा जो है इन्होंने जो है विराट कोहली के भी बहुत सारे आपको पता ही है वो तोड़े हैं, रिकॉर्ड्स तोड़े हैं पहले ही, अब ये T20 के टॉप पे फिर से आ गए हैं। और इसके अलावा जो है ये ODI के भी जो है टॉप बैट्समैन जो है कंसिडर किए जाते हैं।
मुबारक हो साहब, आजम साहब आप आजम हैं।
बाबर है भाई, बाबर मिसाइल,
बाबर मिसाइल है, बाबर मिसाइल टू हैं आप। एनीवे ये थी हमारी आज की खबरें, और शादी जी थैंक यू इतना बस इतना ही टाइम है कि आपसे इजाजत चाहें, बशत जिंदगी कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात, उस वक्त के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
WTOR यंगस्टाउन टोरंटो नाउ कंक्लूड्स अ फुल डे ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एक्टिविटीज। WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
کہ اے مسافر منزل تیری قبر ہے, منزل تیری قبر ہے, तय कर रहा है जो तू, दो दिन का ये सफर है, दो दिन का ये सफर है, दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, दो दिन का ये सफर है, दो दिन का ये सफर है, जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों है, बाकी रहा न कोई मट्टी में सब समाए, मट्टी में सब समाए, मत भूलना यहाँ पर सबका यही हशर है, सबका यही हशर है, दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, दो दिन का ये सफर है, दो दिन का ये सफर है, आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है, क्यों इतना बेखबर है, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, मखमल पे सोने वाले मिट्टी पे सो रहे हैं, शाहो गदा यहाँ पर सब एक हो रहे हैं, सब एक हो रहे हैं, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है, ये मौत का असर है, दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, मट्टी के पुतले तुझको मट्टी में है समाना, एक दिन यहाँ तू आया, एक दिन यहाँ से जाना, एक दिन यहाँ से जाना, रुकना नहीं यहाँ पर जारी तेरा सफर है, जारी तेरा सफर है, दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, दो दिन का ये सफर है, दो दिन का ये सफर है, दुनिया के मुसाफिर।
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और